ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। स्कॉन पंजाबी बाग के और बाकी जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबके लिए विशेष रामचंद्र विजयोत्सव के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं शुभेच्छाएं और विशेष करके इस्कॉन के भक्तों के लिए श्रीपाद माध्वाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो बहुत ही विशेष दिवस है, दो दो फेस्टिवल्स हैं एक प्रकार से। एक फेस्टिवल की वजह से हमारे सारे फेस्टिवल हो रहे हैं। मध्वाचार्य का आविर्भाव होता ना संप्रदाय होता ना इस्कॉन से जुड़ता, तो बहुत ही विशेष उपलब्धि है ये आज। तो कुछ अभी हमारे पास मुश्किल से 45 मिनट है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दोनों त्योहारों के बारे में बोलेंगे। महाभारत तात्पर्य निर्णय में भीष्म देव के द्वारा स्वयं ये भविष्यवाणी दी गई है। चतुस्सहस्रे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सरानन्तौ कलौ पृथिव्यां जातः पुनः विप्रं स भीमो दैत्येर निगूढं हरितत्वमाहि। अतः कलयुग के 4300 साल जब बीत जाएंगे तब भीमसेन दोबारा प्रकट होंगे कलयुग में। इस बार कलयुग में प्रकट होंगे एक ब्राह्मण के रूप में ताकि विष्णु के तत्व का प्रचार हो, जिस तत्व को राक्षसी लोगों ने ढका है। शास्त्र बताते हैं कि यो हरेश्चैव जीवेन भेद भक्ता हरे प्रियः। जीव और ईश्वर के बीच के भेद को जो भी व्यक्ति बताता है, सटीक बताता है, प्रचार करता है, अपने वक्तव्य के द्वारा व्यवहार के द्वारा उसका प्रचार करता है, वो व्यक्ति विशेषतया हरि का प्रिय है। भेद वक्ता हरे प्रिय है। हरी और जीव के बीच का भेद को जो व्यक्ति विश्लेषण देता है, उसका विवरण करता है, वो हरि का विशेष प्रिय होता है। और माता सिद्धांत के अनुसार अनुयायीगण यही मानते हैं कि हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम, सर्वोत्तम भगवान हरि है, परम पुरुषोत्तम भगवान हरि है, और जीवोत्तम जो है वायु है, जीवों में उत्तम। क्योंकि जब मायावाद का अति प्रसार हुआ था और पृथ्वी में नास्तिकतावाद भी बढ़ रही थी, बौद्ध धर्म का भी प्रचार हो गया था, मायावाद असच्छात्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते मैव अभीतान देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। शिव जी बताते हैं पद्म पुराण में कि मायावाद नामक असच्छात्र का मैं प्रचार करूंगा स्वयं। असली में ये प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते, ढका हुआ बौद्ध सिद्धांत है। बौद्ध सिद्धांत शब्द प्रयोग करना ही गलत है, विरोधाभास अपने में, क्योंकि बौद्ध सिद्धांत के अनुसार जिसको हम शून्यवाद बोलते हैं, शून्य से सब कुछ आया है और शून्य में सब कुछ विलीन हो जाएगा, सब शून्य है तो सिद्धांत किस बात का, सिद्धांत की क्या आवश्यकता है। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे कि बुद्ध देव का उद्देश्य था कि वेदों का खंडन करना, निंदस यज्ञ विदे हा श्रुति घातम पशु घातम, पशुओं का जब हत्या होती है उसको देखे दुखी हो गए, फिर केशव धृता बुद्ध शरीर, तो बुद्ध देव के रूप में आए थे भगवान केशव स्वयं। लेकिन वो जरूरी इसलिए था कि लोगों ने वेद का दुरुपयोग किया था, वेदों का दुरुपयोग किया था, उसका दुर्विश्लेषण किया था, जिससे कि लोगों में अब संप्रदाय फैल गए थे, पशुओं की हत्या होती थी, प्रामाणिक ब्राह्मणों के नाम होते हुए पशुओं की हत्या होना विशेष करके कलयुग में अपलब्धनीय है, ये जघन्य कार्य है, अश्वमेधम गवालम, ये सब जो है भर्सनीय कार्य है कलयुग में, पशु बलि तो पूर्णतया निरोधित है। लेकिन वो आवश्यकता थी उसकी, क्योंकि बुद्धदेव का उद्देश्य था, एक प्रकार से स्लेट बहुत गंदा था, स्लेट को साफ करना जरूरी था, तो भगवान स्वयं आए बुद्ध के रूप में, स्लेट को साफ कर दिया, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उनका जिन्होंने पालन किया, उन्होंने ये मानते हुए पालन किया कि बुद्धदेव बता रहे हैं, हम उनके अनुयायी हैं, लेकिन वो कौन थे, प्रभुपाद, वो भगवान है। तो इस प्रकार उन्होंने चीट किया, लोगों को भगवान का अपने आप अन्याय बनाया, नास्तिकवादियों को भी भगवान का अन्याय बना दिया एक प्रकार से। अभी भी हम देखेंगे, हो सकता है बाद में वैष्णव सिद्धांत के प्रसार से होगा ये, कई बिहारों में बुद्ध का, बुद्ध देव का विग्रह होता है, जबकि ना शून्यवाद के हिसाब से उसकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसके बाद स्लेट जब आपके साफ हो गया था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा सही स्लेट है, कौन सा गलत स्लेट है, तो इसलिए भगवान ने स्वयं शंकर जी को भेजा, मैं ये अभिदान देगी कलो ब्राह्मण मूर्तिना, स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए थे शिव जी। 8 साल की उम्र में उनसे पूछा गया, आप कौन है, 8 साल की उम्र में, तो उन्होंने बताया, वन के बीच में विहार कर रहे थे, उन्होंने बताया, न चव्यो न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उन्होंने पूरा श्लोक का उन्होंने पूरा वर्णन किया वहां पे, संकलन किया खुद की रचना की। तो ये बहुत ही विख्यात श्लोक है मायावादियों का, शिवोहम शिवोहम। लेकिन वह शंकर जी बता सकते हैं, आदि शंकराचार्य बता सकते हैं, खुद शिव है, शिवोहम शिव मैं। लेकिन श्री प्रभुपाद बताते हैं साधारणतया शंकरवादी जो भी है वो शिव की सेवा नहीं करना चाहते, शिव बनना चाहते हैं, पार्वती का भोग करना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी असत छात्र है। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे, उनको भगवान में विश्वास कराने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कम से कम ये बोलना कि तुम भगवान, तो फिर आसान स्वीकार करना, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इतना बढ़िया प्रचार किया शंकराचार्य ने कि उसके बाद 4-4 आचार्य आए, और उसके बाद भी भगवान स्वयं भी आए, अभी भी मायावाद का जो प्रसार इतना अधिक है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है प्रचार के लिए, निर्विशेष शून्यवाद है। इसलिए प्रभुपाद को भी भेजा भगवान ने छत्तीसता। लेकिन अब जबकि इतना प्रसार हो गया था, तो आवश्यक था एक व्यक्ति का, एक शक्तिवाद प्राप्त व्यक्ति का, जो कि मायावाद का खंडन कर सके पूरी तरह। तो शास्त्र बताते हैं कि, वैद्य शास्त्र बताते हैं कि देव देवताओं ने भगवान से अनुरोध किया कि बहुत ही अधिक प्रसर हो गया मायावाद। तो उन्होंने सोचा कि आप में से कौन जाएगा जाकर मेरे असली सिद्धांत का प्रचार करेगा। तो फिर उन्होंने वायु को चुना, मुख्य प्राण को, वही मुख्य प्राण जो कि हनुमान के रूप में आए थे त्रेता युग में और द्वापर युग में भीमसेन के रूप में आए थे और फिर उसके बाद कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में स्वयं प्रकट हुए। कुछ विशेष बातें इसमें बताते हैं कि वैसे तो छोटी छोटी कुछ डिटेल्स बता देंगे। मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ था पाचक क्षेत्र नामक स्थान में जो कि उडुपी से बहुत पास है, मैंगलोर शहर के पास आता है, केनरा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में, वर्तमान कर्नाटक में, कर्नाटक और लगभग केरल के बीच में है, बॉर्डर में उडुपी पाचक क्षेत्र। वहां पे शिल प्रभुपाद और भक्तिदानंद महाराज प्रयोग करते एक नाम का मध्य गेह भट्टा और वेदवती के पुत्र के रूप में आविर्भाव हुआ था उनका। कन्नड़ में मध्य गेह मतलब बीच वाला घर को नडी लाया बोलते थे, तो नडी लाया भी उनको नाम बताया गया, बीच वाला घर मध्य गेह भट्टा। तो फिर उनके पुत्र के रूप में आविर्भाव हुआ था मध्वाचार्य का। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने वेदों का जो है पूरी तरह अध्ययन कर लिया था और इतने पारंगत थे कि अपने पिता ने जो कि भागवत कथाकार थे उनके वक्तव्य में भी वो गलतियां ढूंढ सकते थे, हालांकि निंदा की दृष्टि से नहीं। तो एक बार कई प्रकार के पेड़ों का वर्णन हो रहा था भागवतम से, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया लेकिन एक शब्द छूट गया उनसे, लकुचा शब्द, लिकुचा व लकुचा, जो कि एक विशेष पेड़ है। तो शायद उनको अर्थ मालूम नहीं था, उन्होंने इसलिए उसको थोड़ा स्लिप कर दिया, बीच में से निकाल लिया। लेकिन वासुदेव जो उनका नाम था मध्वाचार्य का, बचपन में उनका नाम वासुदेव था, उन्होंने बताया आपने तो ये शब्द छोड़ दिया पिताजी। लिकुचा का नाम से कन्नड़ में हेब्बलसु बोलते हैं, अलग एक पेड़ है, हिंदी में क्या मुझे पता नहीं, तो क्योंकि ये द्वैत शास्त्रों से मिला था इसलिए मैं बता रहा हूं कन्नड़ में हेब्बलसु। तो ये कोई पेड़ विशेष पेड़ है। कहने का उद्देश्य है कि तभी भी नडी लाया अथवा मध्य पर दुखी नहीं हुए अपने पुत्र के पंडित के ऊपर, वो समझ गए कि विशेष व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। और एक बार उनके माता पिता जो कि गरीब थे, उनको बहुत बड़ा कर्जा आ गया था, तो कर्जे को निकालने के लिए जिसने कर्जा दिया था उसको उन्होंने कुछ इमली के बीज हाथ में निकाले दिए और वो सारे, कुछ लोग बोलते सिक्के बन गए, कुछ लोग बोलते सोने के सिक्के बन गए, पूरा कर्जा निकाल दिया। और बताया गया है कि जब भी उनके माता इच्छा करती थी, कि बहुत सारे उसके पहले पुत्र जो है गुजर गए थे, तो इसलिए बहुत ही आसक्त थी अपने बेटे के ऊपर वासुदेव के ऊपर, तो जैसे ही इच्छा करती थी तुरंत प्रकट हो जाते थे। वो क्यों संभव था, क्यों संभव था, वायु मुख्य प्राण है, तो वायु तो कहीं भी पहुंच सकता है, कभी भी इस प्रकार पहुंच पाते थे। और फिर 8 साल की उम्र में है अच्युत प्रेक्ष नामक एक मायावादी सन्यासी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करना चाहा, माता पिता ने रोका, फिर उन्होंने बताया कि जैसे आपका अगला पुत्र पैदा होगा मैं सन्यास लूंगा। तो फिर उसके बाद उनका दूसरा पुत्र सही टाइम पे हुआ और सन्यास भी ले लिया, मैंने सन्यास भी ग्रहण कर लिया 10 साल की उम्र में। उनको पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ नामक ये सन्यास नाम पड़ा उनको, पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ। फिर कई मायावादी सन्यासियों को भी उन्होंने हराया, जैन सन्यासियों का हराया और बौद्ध सन्यासियों का हराया बहुत ही छोटी उम्र में, तो इसलिए उनको मठाधीश बनाया गया आनंद तीर्थ नाम से। और उनके गुरुजी ने जब उनको सिखाया इष्ट सिद्धि नामक एक विशेष मायावाद ग्रंथ, इष्ट सिद्धि इसको लिखा है विमुक्तात्मन नामक मायावादी सन्यासी ने, इष्ट सिद्धि इसको सिखा रहे थे। इसके प्रारंभिक जो पारायण श्लोक है उसी में मध्वाचार्य ने, अर्थात तब तो आनंद तीर्थ थे, नहीं तब पूर्ण प्रज तीर्थ थे, उन्होंने इतनी सारी गलतियां निकाली, कम से कम 10 गलतियां निकाल ली पारायण श्लोक में। बताया कि प्रारंभ में यह हुआ था कि मैं उस परब्रह्म का प्रणाम करता हूं जो कि मैं स्वयं हूं। इसे रिस्पॉन्ड में लोग इसके लिए हंसेंगे, नहीं तो बाकी जगह अच्छा बहुत बढ़िया मैंने। तो पूर्ण प्रज्ञ ने बताया कि इसके अनुसार आप मुझे प्रणाम करिए, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे प्रणाम करिए कि मैं और आप दोनों एक ही हैं, तो क्या अंतर है कि आप मुझे अगर मुझे प्रणाम करें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ही मुझे प्रणाम करिए। बताया जाता है कि उसके बाद कई दिनों तक गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत नहीं चली, फिर भी समझ में आ गया कि सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको सारा प्रेम दिया उन्होंने अच्छे प्रेक्ष ने, और कई बार वो तीर्थाटन पे गए, बद्रिकाश्रम गए, व्यासदेव से मिले, अपने गीता तात्पर्य निर्णय को संपुष्ट कराया, मतलब स्वयं व्यासदेव द्वारा बद्रिकाश्रम में उसके लिए 48 दिन उन्होंने पूरी तरह उपवास रखा, उसके बाद व्यासदेव को देखने गए। तो सामान्य जीव नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फास्टिंग करते थे, फीस्टिंग भी कर सकते थे। एक बार 1000 केले एक साथ खाया गोवा में, और फिर साथ साथ आपको लगा लगेगा कि बहुत ज्यादा प्यास लगी, फिर 30 लीटर दूध भी पी लिया। और एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बचपन में जब खेल रहे थे तो भूख लगी थी, माँ कहीं गई थी, तो वे पूरा बोरा था जिससे बैल को जो खिलाते थे ना वो था, चारा था, पूरा बोरा भर के रखा था, तो वो गिर गया किसी वजह से। उनकी दीदी जब घर वापस आई तो देखा कि बोरे के अंदर वासु है, और सिर्फ वासु है, पूरा चारा खाली। तो बचपन से उन्होंने पूरा स्टैंडर्ड सेट कर लिया था, और ऐसा नहीं सिर्फ खा खा के सब मोटे हो गए, बिल्कुल असामान्य शक्तिशाली थे। श्रील प्रभुपाद कई उदाहरण देते, श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज भी उदाहरण देते। कटंजरी नामक एक बहुत बड़ा वो पहलवान था, तो पहलवान जैसे हम देखते हैं ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए कुछ पहलवान का फोटो है, मुझे लगता है ऐसा पहलवान होगा, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अपना अंगूठा जमीन पे दबाया वो हिला भी नहीं पाया उनको, और यहां तक बताते 30 लोग मिलकर हिला नहीं पाए उनको अचानक। और साथ साथ यह भी बताया गया कि जब एक गंगा के ऊपर वो चले, ऐसे ही सिद्धियां वगैरह आसान थी उनके लिए, गंगा के ऊपर पैदल भी चल पाए। जय श्री राधा राधे कृष्ण कृष्ण बलराम गौरनाथ जगन्नाथ बोले सुब्रह्मण्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और एक फारसी नवाब था, मुसलमान नवाब था, उन्होंने इनको रोका, इनके और इनके अनुयायियों को रोका जाते जाते, तब मध्वाचार्य ने उनसे फारसी भाषा में वार्तालाप कर लिया बढ़िया सा, कि आपके अंदर और मेरे अंदर जो स्फुलिंग है वो एकमात्र स्वयं वो भगवान है, ईश्वर है, इसको आप अल्लाह के नाम से बोलते हो, हम कृष्ण के नाम से बोलते हैं, तो फिर इस प्रकार का भेदभाव क्यों कि मेरा प्रदेश आपका प्रदेश, मेरी भाषा आपकी भाषा, इस प्रकार बहुत ही एक प्रकार से क्या बोलते हैं, प्रगतिशील प्रचारक थे, प्रोग्रेसिव प्रीचर, समय से बहुत आगे थे मध्वाचार्य। तो फिर उन्होंने उनका अपना आधा राज दे दिया, फिर मना कर दिया उन्होंने, उसकी जरूरत नहीं। दोबारा गए बद्रिकाश्रम और फिर शालिग्राम शिलाएं भी प्राप्त करी, अष्टलिंग। और एक बार सागर के तट पर बैठ के द्वादश स्तोत्र की रचना कर रहे थे, 5 स्तोत्र उन्होंने रचना करी, तो अचानक एक वहां पर एक भवंडर या आंधी या तूफान, पता नहीं इन तीनों में अंतर क्या अभी तक समझ में नहीं आया मुझे, भवंडर शायद नदी के अंदर होता है, आंधी और तूफान में अंतर क्या है, जो भी था हवा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हवा का प्रवाह, लेकिन मुख्य प्राण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हवा बहन बढ़ गया, तो जहाज फंस गया था पानी में, तो किसी प्रकार से उन्होंने कुछ चिन्ह दिखाए, अपने कपड़े दिखाए और उस जहाज को बचा लिया। तो मैना नामक जहाज का कप्तान था, तो उसे पूछा कि मैं आपको किसी प्रकार से प्रत्युपकार करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं इस जहाज से। तो उन्होंने बताया कि आप कुछ मत दीजिए, इसके अंदर से एक चंदन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था उसको दे दीजिए, चंदन का एक पत्थर ही समझो स्लैब, उसको 30-30 लोग उठा के चल नहीं पा रहे, और रास्ते में वो टूट के गिर गया, उसके अंदर से बहुत ही सुंदर विग्रह निकला बाल कृष्ण का। तो बाल कृष्ण का विग्रह जो है इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। द्वापर युग में देवकी मां को बहुत दुख था कि अपने बचपन की जो भी लीलाएं हैं भगवान ने यशोदा माई को भेंट के रूप में कर सके, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो फिर कृष्ण ने देखते देखते अचानक अपने आप को बाल कृष्ण के रूप में परिवर्तित कर लिया, उनके गोदी में बैठे खेलने लगे, और फिर वो जैसे ही दही मथने लगी उसको तोड़ भी दिया, घड़े को तोड़ दिया, और उसके साथ जो मथनी का जो लाठी है और रस्सा है दोनों को पकड़ लिया, और इस रूप से उन्होंने इतना मोहित कर लिया, रुक्मिणी जी को भी मोहित कर लिया कि बाद में उन्होंने उसी से एक विग्रह भी बना डाला। ये जो विग्रह है रुक्मिणी जी ने इसकी उपासना करी, भक्ति इसके प्रति उन्होंने व्यक्त की, और जैसे ही द्वापर युग संपन्न हुआ तो अर्जुन ने सफल हो रहा था, तो श्री अर्जुन ने इसको रुक्मिणी वन अथवा गोपी सरोवर में रखा, और काल के प्रवाह में जो है क्रमशः चंदन से आवृत हो गया, अब वही मध्वाचार्य को मिला। उडुपी में इसकी स्थापना करी उन्होंने, आज भी इसकी सेवा होती है, कई सारे मठ हैं वहां पर, 8 मुख्य मठ हैं जिसके सन्यासियों को मध्वाचार्य ने दीक्षित कराया। मध्वाचार्य संप्रदाय में अच्छे विग्रह की पूजा जो है सन्यासी करते हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, किस प्रकार व्यंजनों का एकत्रीकरण करना, सिर्फ आरती घुमाना नहीं है डीटी वर्षन, या सिर्फ डीटी ड्रेसिंग करना नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत डिटेल में दिया है मध्वाचार्य कि कैसे उसके लिए सामग्री एकत्र करना, फूल इकट्ठा करना, उसके लिए अलग अलग एकत्र, और 13 अलग अलग प्रकार के सेवाएं हैं। ऐसा नहीं कि हम 5-6 यहां पे कर रहे हैं, 5 बार भोग या 6 बार भोग अथवा आरती, ये तो होते हैं, लेकिन विशेषतः अगर पूरी डिटेल्स में करें इतने सारे होते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि हर दूसरे महीने बदलते थे ये मठ, तो अब 2 साल लगातार एक मठ को सेवा मिलती है। बक्सीदास महाराज श्री प्रभात बताते हैं, और इसको पर्याय बोलते हैं, 2 साल का एक पर्याय होता है, फिर उसके बाद अगला मठ सेवा करता है भगवान की। तो मध्वाचार्य की लीला है, तो श्री प्रभात ने बताई है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में इसका वर्णन है, मैं आपको रेफरेंस देता हूं, आप पढ़ लीजिए। बाकी लीलाओं का लीला तो सबको मोहक लगते हैं, लेकिन सोच रहे थे तो कुछ तत्व के बारे में चर्चा करें, क्योंकि मध्वाचार्य स्थाने अहिला जहां तत्ववादी उड़पी ते कृष्ण दे की ताहा अहिला प्रेमोन्मादी। चैतन्य महाप्रभु उड़पी में पहुंचे मध्वाचार्य के, जहां पर दार्शनिक जो है तत्ववादी के नाम से जाने जाते हैं, और वहां पर उन्होंने कृष्ण के विग्रह को देखा और उन्मत्त होकर नृत्य किया। महाप्रभु स्वयं उड़पी गए थे, और तो इस श्लोक के तात्पर्य में मध्य लीला 245 चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला 245 इसमें पूरा वर्णन है मध्वाचार्य के जीवनी का। कई लोग 1238 ईस्वी बोलते हैं, 1160 शकाब्द, कई लोग 1196 ईस्वी बोलते हैं, या 1118 शकाब्द उनका आविर्भाव दिवस जो कि आज है आविर्भाव वर्ष। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ समय और तत्व के बारे में चर्चा करें। मध्वाचार्य स्वयं अपने आविर्भाव के बारे में वर्णन करते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में, प्रायासो राक्षसैश्चैव त्वयिकृष्णत्वमागते शेषा यस्यन्ति तच्छेष अष्टाविंशे कलौयुगे गते चतुस्सहस्राब्दे तमोगार्ति शतोत्तरे। मध्व मुनि का आविर्भाव था 4300 कली वर्ष के हिसाब से, युग के हिसाब से। तो इसको श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने परिवर्तित किया है 1200 ईस्वी, 1199 ईस्वी। तो ये एक बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बलदेव विद्याभूषण जो कि यहां पर गुरु परंपरा हम देख सकते हैं, इसमें गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तक ही यहां पर है उनके चित्र। अब अगर भगवत गीता के प्रारंभ में जो आचार्यों की सूचिका दी गई है उसमें दोनों का नाम है बलदेव जगन्नाथ एक साथ, हालांकि समकालीन नहीं है, बलदेव विद्याभूषण से भी बहुत पूर्व थे। प्रमेय रत्नावली जो कि उनका प्रमुख ग्रंथ है उसमें उन्होंने संपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है मध्वाचार्य का। हाँ ये बताना भूल गए, जब उडुपी कृष्ण को अपने गले लगाते हुए मध्वाचार्य चल रहे थे तो चलते चलते द्वादश स्तोत्र के बाकी सातों स्तोत्र उन्होंने रचना कर डाली। इस प्रकार द्वादश स्तोत्र है, बारह स्तोत्र बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। आप इस्कॉन टेलीविजन के द्वारा इसके राइट्स है मध्वाचार्य मूवी का, अगर कुछ भक्त देखना चाहते हैं उसमें समझ सकते हैं कि बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। और मध्वाचार्य इतने बड़े पंडित थे, एक बार उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया, कुछ इस प्रकार था, भा 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 भा, इस प्रकार पूरा श्लोक है। लेकिन ये भ अक्षर का 28 अर्थ बताए मध्वाचार्य ने। कुछ सुनना चाहेंगे कुछ अर्थ? भ शब्द का एक अर्थ है दीप्त प्रज्वलित, दूसरा है ज्ञाने अर्थात ज्ञान का प्रति स्वयं, और तीसरा है आधारे सब कुछ के आधार है, चौथा है औदार्य संधाने अर्थात जो इकट्ठा करता है ये संधि करने वाला तत्व, उपादाने जो कि सभी भौतिक व्यंजनों का स्रोत है, निकटा भावे अर्थात आत्मा के सबसे निकट, सेव्यत्वे सेवा का एकमात्र वस्तु। इस प्रकार अलग अलग ये जो भ नामक धातु है इस धातु का उन्होंने इतने वर्णन किए। कौन से में ये भी यमक भारत नामक एक ग्रंथ है उसमें यमक भारत, और विष्णु सहस्र नाम है विष्णु जी के हजार नाम जो है विष्णुदेव ने जिसका उच्चारण किया था। उन्होंने एक सभा में बताया कि यह इतना शक्तिशाली है इसमें से एक एक श्लोक जो है एक एक शब्द जो है विष्णु के नाम इसके इसके सैकड़ों अर्थ हो सकते हैं, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो पहला शब्द है पहला नाम है भगवान का विष्णु सहस्र नाम है विश्वम विश्वम विष्णु वशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत, पहला शब्द है विश्वम। तो विश्वम शब्द का मध्वाचार्य ने 100 मीनिंग्स बताए और लगभग 30-40 तक पहुंच के तो लोगों ने रोक दिया, बस 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 हम आगे झेल नहीं पाएंगे, सामान्य नहीं था उनका पांडित्य। और इस पांडित्य का उन्होंने सदुपयोग किया दो तरीके से, मध्वाचार्य संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो तत्व इकट्ठा किए अपना लिए इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने। पहला है केवल अद्वैत निरसन और मायावाद खंडन अर्थात मायावाद खंडन, केवल अद्वैत निरसन पूर्णतया स्मैश किया मायावाद का, घटाकाश कुटाकाश सुना है मायावादियों का सिद्धांत? किसने सुना? हाथ ऊपर करिए बताएं कौन सा है, क्या है घटाकाश कुटाकाश? घड़े के अंदर भी आकाश है बाहर भी आकाश है, जब घड़ा टूट जाता है तो आकाश ही आकाश है, इसको बोलते हैं घटाकाश कोटाकाश सिद्धांत। इसका खंडन कैसे करेंगे बताइए ब्रह्मचारी? तो मध्वाचार्य ने इसका खंडन किया कि घड़ा टूटने के बाद भी घड़े के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उनका अलग अस्तित्व है, आकाश से अलग अस्तित्व है उनका, क्ले तो बचा है ना उसका, आकाश नहीं है क्ले तो है ही। तो सिंपल एग्जाम्पल उसको पूरा खंडन कर दिया। अभी दूसरा, सारे जितने भी नदियां हैं जैसे आप सागर में जैसे मिल जाते हैं आकाशात पतितम तो है सागर प्रतिगच्छति मिल जाते हैं सब कुछ एक हो जाता है, सारी नदियां बहती हैं सागर में एक हो जाते हैं, एक हो गया सब कुछ। तो मध्वाचार्य ने बताया कि एक ग्लास में पानी है दूसरे ग्लास में पानी है, उस पानी को इस पानी में मिला दिया तो पानी पानी एक हो गया, नहीं हाँ या नहीं? लेकिन मात्रा बढ़ गई ना, मात्रा बढ़ गई पानी का जल की मात्रा बढ़ गई अर्थात ये पानी और वो पानी अलग है। और साथ साथ प्रभुपाद ने इसका भी इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया भगवत गीता में, कौन बता सकता है? यस हाँ, तो नदी भले सागर में मिल जाएंगे उसमें जलचर जीव तो हैं, और भक्त जो है जल नहीं बनना चाहते हैं, उन जलचरों के साथ भक्ति रूपी सागर में गोते लगाना चाहते हैं। ये उदाहरण दिया श्री प्रभुपाद ने, अर्थात अस्तित्व अलग होता है, जीव का अस्तित्व अलग होता है। तो प्रमेय रत्नावली से मध्वाचार्य के सिद्धांत को पहले समझते हैं, तो पहले संस्कृत पढ़ूंगा फिर इसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। श्री महात्म प्राह विष्णु परात्मम अखिलान नाय वेद्यम च विश्वम सत्यम भेदम च जीवम हरिचरण तारतम्य चेषम मोक्षम विश्वांग्री लाभम तदमल भजनम तस्य हेतु प्रमाणम प्रत्यक्षाधित्रयम चेत उपदिशति हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र। ये प्रमेय रत्नावली में बलदेव विद्याभूषण पाद ने बताया है, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर आमनेय सूत्र नामक श्लोक उद्धरण करते हैं, जी अध्याय धर्म में इसका वर्णन होता है। आमनेय प्राह हरि परम प्रेम भक्ति साब्धि तद्भिन्ना संसक्त भावान प्रकृति सुगलितान तद्विमुक्त भावान तत्विमुक्त जीवान भेदा भेद प्रकाशन सकलम अभी हरे। ये है मुख्य डिफरेंस मध्वाचार्य के सिद्धांत और गौड़ी सिद्धांत में। भेदा भेद प्रकाशम सकलम अपि हरे साधनम शुद्ध भक्ति साध्यम सत्प्रीत्य उपदेशक गौरचंद्र स्वयं। तो ये नौ चीजें हैं, दोनों में समान है, द्वैत सिद्धांत और गौड़ीय सिद्धांत। गौड़ीय सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? गौड़ीय सिद्धांत नाम क्या है? अचिंत्य भेद भेद। अचिंत्य भेद भेद और गौड़ीय द्वैत सिद्धांत में मुख्य एक एडिशन ये है कि भेदा भेद प्रकाश, इसके साथ साथ ये भी एडिशनल आ गया। जीव गोस्वामी ने भी इसका विशेष वर्णन किया मध्वाचार्य का कोट करते हुए। तो नौ सिद्धांत प्रमुख, पहले तो दो बातें बताते हैं, फिर आगे रामचंद्र जी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक तो यह है कि पंच वेद का वर्णन किया था मध्वाचार्य ने। पंच वेद क्या क्या है? एक है ईश्वर और जीव के बीच का अंतर, ईश्वर और जीव अलग हैं, इसलिए दो दिखाते हैं द्वैत। बाकी जितने भी सिद्धांत हैं, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है और विश्व स्वामी का शुद्ध अद्वैत है और निम्बर्काचार्य का बाद में द्वैताद्वैत है, इन सब में थोड़ी थोड़ी झलक आते हैं अद्वैत सिद्धांत का। लेकिन द्वैतवाद ऐसा है जो पूर्णतया अलग है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको अपना सबसे निकट माना। हालांकि सभी संप्रदायों में आपको मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि द्वैताद्वैत है जो सबसे निकट है भेदा भेद के, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन द्वैतवाद इसलिए सबसे निकट है क्योंकि विशेष करके यो हरिश्चेद जीव है ना भेद भक्ता, दोनों का अंतर स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहला भेद है ईश्वर और जीव के बीच का, दूसरा भेद है दो जीवों के बीच का, दो जीवों के बीच का अंतर है, तीसरा है प्रकृति के दो वस्तुओं के बीच का, जड़ वस्तुओं के बीच का, चौथा है जीव और प्रकृति के बीच का, और पांचवा बचा क्या है? ईश्वर और प्रकृति के बीच का। अब प्रकृति के दो वस्तुओं के बीच अंतर कैसे बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहर भी है अमृत भी है, जहर मारता है अमृत जिलाता है या प्राण देता है। तो इस प्रकार वस्तुओं में, दो जड़ वस्तुओं में भी अंतर है, जीवों में भी अंतर है, मुक्त जीवों के बीच भी, दो मुक्त जीवों के बीच भी अंतर है। एक मुक्त जीव एक प्रकार के अपने स्वरूप में स्थित होते हुए सेवा करता है, दूसरा जीव अपनी सेवा करता है। इस प्रकार भेद जो है सनातन है, शाश्वत है, तो इसलिए द्वैत। और साथ साथ एक तो मुख्य बात है कि परम भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं, दूसरा है सभी वैदिक ज्ञान का साध्य स्वयं विष्णु है। यस्मिन् विज्ञातः सर्वम् एतद् विज्ञातं भवति, विष्णु को जान लिया सब कुछ जान लिया, कृष्ण को जान लिया सब कुछ जान लिया। और शंकराचार्य ने बताया ब्रह्म सत्यम जगत नित्य, लेकिन मध्वाचार्य ने क्या बताया, जगत सत्य है, अनित्य है लेकिन सत्य है। और जीव जो है विष्णु से अलग है, भगवान विष्णु से, जीव भगवान हरि के चरण कमलों के सनातन दास है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, ये बात में ऐड किया महाप्रभु ने ऐड किया, इसलिए हमें पता चला। अन्यथा ये बात तो है मध्वाचार्य के सिद्धांत में कि एकल ईश्वर कृष्ण और सभी वृत्ति और जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आगे ही बताया गया कि दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। और आगे परम भगवान हरि के चरण कमलों की प्राप्ति ही सर्वोच्च सिद्धि है। फिर बद्ध जीव के मुक्ति का एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्ति, कर्माण निरत हरि किंतु जब भक्ति भाजन, कर्मों का नष्ट होता है तो बद्ध जीव मुक्त होता है। कर्म का नष्ट कैसे होता है, भक्ति करने से। अब ये बताया गया जो प्रमाण त्रय है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, यही सारे आधार है सभी ज्ञान के। और शब्द प्रमाण को प्रमुख, शब्द प्रमाण को प्रमुखता दी मध्वाचार्य ने। तो ये थे उनके विशेष सिद्धांत। और एक पॉइंट और था, काफी है, बहुत सारा समय मध्वाचार्य के ऊपर भी गया, कुछ समय रामचंद्र जी के ऊपर भी बात करते हैं। और विशेष बात यह है कि दोनों के हमने एक बात देखी है कि वैष्णव त्योहार जितने भी हैं, जिस दिन जो भी त्योहार आता है उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। आज का कनेक्शन कौन सा बता सकता है, सोचिए। यस ओके दैट इज वेरी गुड। वायु के अवतार हैं हनुमान जी और मुख्य प्राण के, और मध्वाचार्य में और क्या सिमिलरिटी। यस ओके, थोड़ा ऑब्ट्यूज है लेकिन एक्सेप्टेड। नाइस, और क्या सिमिलरिटी है। मध्वाचार्य का नाम क्या था पहला, वासुदेव। और बताया गया कि जितने भी अवतार हैं भगवान के वो वासुदेव रूप से प्रकट होते हैं। और जो चार भाई प्रकट हुए थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसमें राम जी को वासुदेव का विस्तार माना गया। हालांकि अलग अलग वासुदेव हैं लेकिन ये सिमिलरिटी है। तो वासुदेव रमंते जोगिनाम अनंते प्रेमानंद चिदात्मने इति रामपदे न्यासो परम ब्रह्म विधीयते। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का हमेशा कोट करते थे कि योगियों के हृदय को भी आनंद जो देते हैं वो है राम, आत्मा राम बोलते हैं ना, आत्मा राम को भी तुष्ट कर देते हैं राम। इति रामपदे न्यासो परम ब्रह्म विधीयते, स्वयं परम सत्य है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि श्री राघवम दशरथात्मजम अप्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान वै रत्नदीपम आजान बाहुम अरविंद दलाय दाक्षम रामम निशाकर विनाशकरम नमामि। श्री राघवम दशरथात्मजम, दशरथ जी के पुत्र थे, अप्रमेयम अतुलनीय है, सीतापतिम रघुकुलान वै रत्नदीपम, रघुकुल को शोभा बढ़ाने वाले दीप है। आजान बाहु अरविंद दलाय दाक्षम, चांदों तक लंबा उनके लंबे उनके हाथ थे और उनका उनकी आंखें इतने कोमल थे कमल के तल जैसे। रामम इंदी मर श्यामम राजी वायत लोचनम जागोष नर्जिता रोदिम जानकी रमनम भजे। उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं, इंदी मर श्यामम, उनका रंग इस प्रकार है हरा, लाइट ग्रीन कई लोग बताते हैं। अब चंदन यात्रा जब होता है, यू कैन सी राधा पाश्चादी टेम्पल में जो सीताराम ऑल्टर होता है उसमें राम जी का कलर जो है थोड़ा ग्रीनिश कलर वो मिक्स करते हैं चंदन में। हालांकि डीटी वर्शिप में दो मत है कि कलर मिक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो राम जी का विजयोत्सव है आज। वैसे तो शास्त्र भी बताता है कि शिशुपाला पेड़ के नीचे जब सीता जी बैठी थी अशोक वन में, अशोक वाटिका में, तब हनुमान जी पहुंचे और बताया कि श्री रामचंद्र जी का विजय हो गया। ये क्योंकि ये रहस्य उन्होंने उस दिन बताया सीता जी को, वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से बताते हैं वो दिवस है रामचंद्र विजय उत्सव, लेकिन वैसे तो हम मानते हैं कि उसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारा और तीन जो पुतले हैं एफिजीज उनको जलाए जलाते हैं, रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को। इंद्रजीत को मारना कुछ आसान नहीं था, इंद्रजीत को वरदान प्राप्त हुआ था मेघनाद जो कि इंद्र को हरा डाला था उसने, बहुत ज्यादा अहंकार था उसने अपने अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी उपलब्धियों के ऊपर। उसको वही व्यक्ति मार सकता था जिसने कई साल लगातार कोई भोजन नहीं किया हो, जो सोया नहीं हो और जिसने परस्त्री के प्रति नजर नहीं डाला हो, ऐसा कौन व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति जो कर सकता था, जो कि लक्ष्मण जी, जिन्होंने 14 साल जो है पूरी तरह निद्राहारा विहारा का भी विजित हो सब छोड़ दिया, असली गोस्वामी, इसलिए आदि गुरु है लक्ष्मण जी। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि लक्ष्मण अर्थात गुरु के प्रतीक हैं। गुरु जो है हमारे अहंकार को काटते हैं, इंद्रजीत अहंकार का प्रतीक है और इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा, इसी प्रकार गुरु हमारे अहंकार को काट सकते हैं, मार सकते हैं, इसलिए गुरु का शरण में लेना चाहिए। रामचंद्र विजयोत्सव से एक शिक्षा है हमारे लिए, और गुरु किस प्रकार हमें शिक्षा देने के योग्य बनते हैं अपनी तपस्या के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा, जिसे स्वयं लक्ष्मण जी ने प्रकट किया था अपनी भक्ति सीताराम के प्रति और अपनी तपस्या, इनके द्वारा वो इतने योग्य बने कि इंद्रजीत को मार पाए। इसी प्रकार हमारे अहंकार को साधु और गुरु इस प्रकार काट सकते हैं क्योंकि उनमें तपस्या और भक्ति का बल है। अब रावण की हत्या एक प्रकार से पूर्व घोषित थी, वेदवती नामक एक स्त्री को जो कि योगिनी थी उसको अपनाना चाहा रावण ने उसके इच्छा के विरुद्ध, तो उससे शाप मिल गया कि मैं अगले जन्म में आऊंगी स्त्री के रूप में तो मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, पहला शाप। दूसरा शाप मानदाता नामक रघुवंश के राजा को इन्होंने युद्ध में हराया था, लेकिन युद्ध में हराते समय एक सिद्धांत होता है कि कभी भी शत्रु का अवहेलन नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, तो मरणासन उस राजा को मजाक उड़ाया रावण ने, देखो कैसे हार गया, मानव तुच्छ मानव, इस प्रकार कुछ ना कुछ बताया, तो उसने भी शाप दिया कि मेरे ही वंश में पैदा होने वाला एक व्यक्ति तुम्हें मारेगा, दूसरा शाप। तीसरा शाप, रंभा चल रही थी अप्सरा नलकुबर की पत्नी, कुबेर के पुत्र नलकुबर की पत्नी, उसका बलात्कार कर डाला रावण ने, तो नलकुबर ने शाप दे दिया कि किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध तुम स्पर्श नहीं कर सकते, शाप नंबर 3। शाप नंबर 4, कैलाश गया तो नंदी को, नंदी की भी भर्त्सना की, नंदी का मजाक, देखो क्या बंदर जैसा चेहरा है तुम्हारा, तो नंदी ने शाप दे दिया, वानर भी तुम्हारे पराजय का कारण बनेंगे। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? जैसे भक्ति तीर्थ महाराज बताते हैं, बी काइंड टू पीपल ऑन द वे अप, दे विल बी द वंस विल बी विथ यू व्हेन यू आर ऑन योर वे डाउन। जब हम हमारा उभरता सितारा होता है, जब क्या बोलते हैं उसको, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उस समय जब हमारी हमारे जो मूर्धन्य की तरफ हमारा प्रयाण होता है जेनिथ की तरफ, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिलेंगे हमें, मित्र मिलेंगे, उस समय उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हमें बहुत सारे उपलब्धियां हो सकती हैं, रावण इतना बड़ा पंडित था, अष्ट सिद्धियां थी उसके पास, बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, पोएट था, इतनी सारी सिद्धियां होते हुए भी हरो अभक्त से कुतो महत्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो गति, भक्ति नहीं थी परम भगवान के प्रति, इसलिए राम के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, शिला प्रभात ही बताते हैं तात्पर्य में। नास्तिक लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, 16वें अध्याय में ही होता है, असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आवरणीश्वरम, राज भगवान नहीं है, ये जगत जो है मिथ्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन है, भगवान तो कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे में जो भी उपलब्धियां हैं मेरे मात्र क्षमता के कारण निश्चय है, मेरे मेहनत के बल पर मैं हाजिर करूंगा सब कुछ, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है। डिवोशन में आने के बाद भी हमारे पास ये बहुत सारे बहम होते हैं इस प्रकार के कि मेरे में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, मैं बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता हूं, बहुत अच्छा कीर्तन कर सकता हूं, बहुत अच्छा फंड रेजिंग कर सकता हूं, या बहुत अच्छा ह्यूमिलिटी दिखा सकता हूं, मुझे अपनी ह्यूमिलिटी के ऊपर प्राइड है। इस स्थिति पे अंततोगता परम भगवान की शुद्ध भक्ति से ही हम बच सकते हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का उदाहरण लेते हैं तात्पर्य में, नवम स्कंध में, सभी उपाधियों के ऊपर हम उठेंगे तभी एक हो सकता है, इससे बच सकते हैं। या कभी ये सोचना कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा सहयोग नहीं दे रहा है, यह भी गलत है। संन्यास का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, साथ में परमात्मा है। भक्ति प्रोद भागवत महाराज बोलते हैं, संन्यास इज नेवर अलोन, इज नॉट मंत्रास विद हिम, परमात्मा इज विद हिम, एताम सास्ता या परात्मनिष्ठम, भौतिक भाव बंधन का पार करने का ही लक्षण है, भगवान पे पूरी तरह श्रद्धा विश्वास। और रावण के पास इतने सारे उपलब्धियां थी, फिर भी आखिर में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम दिशन्ति, ये उदाहरण देते हैं कि उसके हृदय में जैसे ही ब्रह्मास्त्र घुसा, अगस्त्य मुनि के मंत्रों से शक्तिपात प्राप्त ब्रह्मास्त्र जब रावण के हृदय में घुसा, क्योंकि पता गया कि अमृत उसके हृदय में था, विभीषण ने यह बात बता डाली, आदित्य हृदय मंत्र की भी उपासना करी राम जी ने, पूरी तरह सारा ड्यूटी किया, शत्रु को जो भी विश्वास करना था सब पे विश्वास था राम जी को, उसको यूज करते हुए रावण का वध किया। और रावण के पास इतनी सारी उपलब्धियां थी फिर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहने का उद्देश्य है कि चाहे इंद्रजीत रूपी प्राइड हो, रावण रूपी लस्ट हो, रावण को रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका लस्ट था, काम। हम सबका भी सबसे बड़ा शत्रु हमारा काम है, काम, जो भी काम हमें कृष्ण से दूर ले जाता है। भगवान के मंदिर में आने के लिए हमारे पास बहुत सारे काम है, इसलिए हम मंदिर में नहीं आएंगे। क्यों मंदिर नहीं आएंगे? बहुत सारा काम है। भक्तों के साथ क्यों ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है, प्रोजेक्ट्स ओवर पीपल। तो राम जी के जिस विजयोत्सव से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि राम जी से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में बसे हुए रावण का भी वध करें, क्योंकि लस्ट है, लस्ट रूपी इस रावण का वध करें, और वध करने के बाद भी रावण के प्रति अनुकंपा दिखाए रामचंद्र ने, उनका पूरा अंत्येष्टि करवाई विभीषण के द्वारा, ये बताते हुए कि ये नरक को प्राप्त हुआ। हालांकि राम जी के हाथ से जो भी मरता है वो नरक को प्राप्त नहीं होगा, फिर भी तो ये अनुकंपा उन्होंने दिखाया अपने शत्रु के प्रति भी। ये भी एक शिक्षा ले सकते हैं हम, अहंकार का नष्ट, काम का नष्ट, शत्रु के प्रति भी अनुकंपा, और बिना भक्ति के हमारे पास जितने भी उपलब्धियां हैं वो किसी काम के नहीं हैं। और आखिरी बात, रावण जब उभर रहा था उस समय उन्हें इतने लोगों की निंदा करी कि आखिरी समय में उसके साथ कोई नहीं था। जब हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं तो बाकी लोगों को हमें छोटा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा दिखाएंगे तो अहम मौके पे हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो रामचंद्र विजयोत्सव की विशेष शिक्षा यह है कि हम अपने अंदर के रावण को मार डालें, कामरूपी रावण को, और अपने अंदर के इंद्रजीत को भी मारें, इन सबको मारें, सभी राक्षसों को मारें, कुंभकर्ण को मारें। और ये देखिए आखिरी कथा बता के समाप्त करते हैं। हमारे अंदर का सबसे बड़ा रावण यह है, भक्ति में आने के बाद यह है कि हमें जब विनम्र बनाने के लिए जब हमारे गुरु वृंद साधु वृंद हमें उपदेश देते हैं तब उनको स्वीकार नहीं करते हम, उसको कैसे लिया जा सकता है। रावण गया था बलि महाराज के पास, आपको तो प्रभु बताते हैं इस कथा को, बलि महाराज के पास गया था और बोला कि मुझे इस राम को हराना है हर हाल में। तो बलि महाराज बता, देखो ये छोड़ दो बहन, क्योंकि सीता जी स्वयं लक्ष्मी है, शक्ति के बिना शक्तिमान, शक्तिमान के बिना शक्ति के वो करने की इच्छा रखना गलत है, और रावण ने ही गलती करी, सीता जी को भोगना चाहा बिना शक्तिमान के। तो उस समय बलि महाराज ने बताया, वो देख रहे हो पहाड़, तो रावण हाँ है पहाड़ दिख रहा है, ये किस चीज का बना है, ये तो सोने का बनाया लग रहा है, ये सोने का पहाड़ नहीं, ये हिरण्यकशिपु का कुंडल है, ये वो हिरण्यकशिपु है जो तुमसे बड़ा था, जिसके भ्रुकुटियां हिलाने से मौसम बदलते थे, सूर्य और चंद्र डरते थे उठने के लिए, वो हिरण्यकशिपु था जिसको नरसिंह देव ने अपने नाखूनों के बीच के फंसा के ढूंढना शुरू किया कि दिख नहीं रहा था बीच में, युद्ध के बीच में हिरण्यकशिपु गायब हो गया था, अरे कहां, ओ अच्छा नाखून के बीच में है, तनु भृंगम, भृंगम इतना छोटा सा था, और वही नरसिंह देव है जो अब रामचंद्र के रूप में आए हैं, इसलिए डरो और अपने आप को समर्पित करो। अभी इससे ज्यादा क्या कोई देगा उपदेश। और महाजनों ये गतस्पंता बलि महाराज महाजन है, उनका उपदेश का पालन नहीं किया रावण ने, देख लिया क्या हुआ नतीजा, यही बता रहे हैं मंडोदरी, आखिर में आकर रो रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है आपका जो भी आपका सौभाग्य है नष्ट हो चुका है, इस वजह से नष्ट हुआ क्योंकि आपने सीता के ऊपर नजर डाली और सीता के प्रभाव से ये सब नष्ट हुआ, और आपके काम के प्रभाव से आप सीता के प्रभाव को समझ नहीं पाए, मंडोदरी बोलते हैं विलाप करते हुए, बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस ऑफ लस्ट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंफ्लुएंस ऑफ मदर सीता। और वही वानर जो कि पत्थर और पहाड़ और पेड़ फेंककर युद्ध जीत गए, दैव शक्ति प्रभुपाद बताते हैं दैव शक्ति, और उनके विरोध क्या चल रहा था, पुरुषाकार शक्ति, मेरे में इतनी सारी शक्तियां हैं, मेरे पास हथियार हैं, युद्ध के ये है औजार है सब कुछ है, लेकिन सारे हार गए राक्षस क्योंकि इनके पास दैव शक्ति था। हरे श्री रघुपाद की जय, रामचंद्र जयोत्सव की जय, श्रीपाद मध्वाचार्य भक्ति महोत्सव की जय।